छह महीने पहले ईरान और विश्व के छह देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था। ये समझौता अंततः अब लागू हो गया है, लेकिन इस समझौते के लागू होने से वैश्विक भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और भारत और ईरान के रिश्तों को देखते हुए भारत पर क्या असर पड़ सकता है, यही विषयों पर और जानने के लिए हमने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में रिसर्च फेलो और मध्य पूर्व विश्लेषक डॉक्टर फजल रहमान सिद्दीकी से बात की।
देखिए, जहां तक एग्रीमेंट तो जो जुलाई 2015 में हुआ था वो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन जो टाइम फ्रेम था जो छह महीने का, वो इसलिए रखा गया था कि उनको ये चीजें धीरे धीरे किस तरह से सैंक्शन को रिमूव किया जाए। तो ये सबसे बड़ी पिछले दो तीन साल से जो चीजें चल रही हैं ईरान और P5+1 के बीच, सैटरडे को वो चीजें बिल्कुल फाइनली उस पर पहुंची जहां पर दोनों साइड बिल्कुल सेटिस्फाइड है। सबसे मेजर विक्ट्री ईरान के लिए ये है कि ईरान पिछले तकरीबन 30 साल से इकोनॉमिकली बहुत ही आइसोलेटेड था, तो इसके कई पार्ट्स हैं ईरान की विक्ट्री के लिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। इसको हम तीन हिस्से में देख सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली देखें तो ईरान के लिए इससे बड़ी विक्ट्री नहीं हो सकती है जबकि ऑयल प्राइस बहुत ही लो है। ईरान के तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 100 बिलियन डॉलर जो है उनके डिफरेंट बैंक में जो सील्स हैं उसको ईरान वापस पा जाएगा। ईरान जो है ग्लोबली एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ होगा। अब वहां पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे ऑयल टाइकून जो हैं वो ईरान के ऑयल क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब ईरान जो है तकरीबन पिछले जो 2.5 मिलियन बैरल पर डे वो प्रोड्यूस करता था वो घट के तकरीबन 1 मिलियन हो गया था। तो ईरान जो है अब फिर अपने पुराने जो उनका प्रोडक्शन जो रेशियो था वो बढ़ जाएगा। तो ये सब उसकी इकोनॉमिक आस्पेक्ट है। और उसके अलावा पॉलिटिकली, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का ईरान को बहुत फायदा होगा। इंटरनली फायदा यह होगा कि ये प्रेसिडेंट रूहानी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। रूहानी जब आए थे 2013 में तो उनका ये मेजर पॉलिटिकल प्लान था कि हमको ईरान को, जो ग्लोबल आइसोलेशन ईरान जो सफर कर रहा है उसको हमें खत्म करना है। अभी फरवरी में वहां पे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का इलेक्शन है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहां देखने को मिलेगा। लेकिन इससे भी अगर हम आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट, पॉलिटिकल आस्पेक्ट को अगर हम किनारे रख दें तो जो और सबसे बड़ी विक्ट्री है जो ईरान के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है इसकी स्ट्रेटजिक विक्ट्री। जब मैं स्ट्रेटजिक विक्ट्री कह रहा हूं तो मेरा मानना यह है कि जो उसके ग्लोबल जो रीजनल जो राइवल्स हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया, जीसीसी कंट्रीज
और इसराइल भी इसके विरुद्ध था।
जी जी, और जिस तरह का पिछले 5-6 साल में जो रीजन में एक टर्माइल है वहां पे एक ईरान एक बहुत बड़ा एक्टर, जो अब तक ईरान एक फरिया स्टेट था अब वो एक एक्टर बन के उभरेगा। तो मुझे ये लगता है कि तीन चीजें इंटरनली, इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उससे बड़ी चीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और उससे बड़ी जो चीज है स्ट्रेटजिक और जो डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री हुई है, जो गेन होगा ईरान को, उसको हम और आप बहुत ही विजिबल और बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से कमिंग मंथ और कमिंग ईयर्स में हम देख सकेंगे।
जी,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए भी एक बहुत ही बड़ी एक विक्ट्री इसलिए है कि अमेरिका धीरे धीरे उस रीजन से रिट्रीट कर रहा है। पिछले 4-5 साल देखिए, चाहे सीरिया के मौके पर हो, चाहे यमन में हो, अमेरिका बहुत ही डोल्ड्रम रहा है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका एक ग्लोबल पावर, जो उसका मतलब एक जो पुलिसमैन है उस रीजन का, जब वो रिट्रीट करेगा तो वो जो रिप्लेसमेंट है, जो वैक्यूम है, वो मेरे ख्याल में ईरान फिल अप करेगा। और रशिया का जो एंट्री हुई है वो ऑलरेडी ईरान के साथ है। तो नाउ द गल्फ नेशंस ने मना की आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम।
जी, ये बताइए कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए और जियोपॉलिटिक्स, हम भू राजनीति की बात करें, तो क्या आप इसे एक सकारात्मक कदम देखेंगे कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का टकराव था, कुल मिलाकर क्या ये जो परमाणु समझौता हुआ है ये वैश्विक भू राजनीति के लिए एक अच्छा कदम है?
देखिए, ये जो है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, ये पिछले तकरीबन एक डिकेड से तकरीबन जो एक दशक से जो एक ईरानी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो सबके लिए एक बहुत ही बड़ा, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया जो प्रोपगेट करती है कि ईरान ने तकरीबन वो लेवल अचीव कर लिया था जहां से वो न्यूक्लियर बम बना सके। अगर उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे आप, वेस्ट वर्सेस रिस्ट देखेंगे आप, अगर उसमें देखें आप कि वेस्ट क्या चाहता था और रिस्ट क्या चाहते थे, उसमें ये वाकई बहुत बड़ी विक्ट्री है और बहुत ही बड़ी स्टेबिलिटी है जिस तरह से वेस्ट ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा था। तो एक ग्लोबल लेवल पे नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड मोर सेफर प्लेस। लेकिन अगर इसको हम रीजनली अगर देखेंगे तो इस समझौते के बाद, इस सैंक्शन रिमूवल के बाद, ईरान एक बहुत ही मेजर असर्टिवनेस की तरफ बढ़ेगा और ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि पीस और इंस्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। बहरहाल वहां पे पीस तो नहीं है पिछले 5-6 साल में, लेकिन अब वो जो फाइट थी, जो कन्फ्रंटेशन है, उसके और भी बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे और जो फाइट अब तक सीरिया में, यमन में बिल्कुल कन्फाइंड थी, अब हमें, मुझे लगता है पर्सनली कि बहरीन में उसी तरह की चीजें होंगी। सऊदी अरेबिया का जो ईस्टर्न प्रोविंस है, अभी आपको याद होगा पिछले महीने उन्होंने उन्होंने जिसको एग्जीक्यूट किया इनके बड़े हाई प्रोफाइल शिया किलर्जी को, अब वो सारे मुद्दे उठेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे तो ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, उनको ये लग रहा है कि इससे जो है हम सेफ है, कि अमेरिका का जो मेजर एलाई इसराइल सेफ है, यूरोपियन नेशंस को लग रहा है कि अब जो है अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की अब जो पूरा वो फेज था वो समाप्त हो गया, अब दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं बची है जो किसी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स के आसपास हो। ईरान वाज द लास्ट लाइक एक्टर। तो अब देखिए डिजिटली इसका जो असर पड़ेगा वो बहुत ही निगेटिव होगा और इसके लिए मेरे ख्याल में ये जो है वेस्टर्न पावर्स को भी, यूरोपियन पावर्स को भी और रीजनल पावर्स को भी, इसको ये पूरी तरह पता है उनको है कि ये चीजें ईरान को एसोसिएशन, ईरान को एक हेजिमोनिक जो उनकी जो डिजाइन है, जो उनका एम्बिशन है, उसकी तरफ ले जाएगा।
जी एक आखिरी सवाल फजल जी आपसे कि भारत के ऊपर जो ये ईरान पर जो प्रतिबंध उठाए गए हैं उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत और ईरान के बहुत पुराने गहरे संबंध रहे हैं।
देखिए जहां तक भारत और ईरान का मामला है, इस तरह से ये भारत के लिए भी ये मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि इसलिए भारत कभी किसी दूसरे कंट्री के मामले में या किसी फॉरेन पॉलिसी का जो स्टांस है बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन इंडिया का जो वो है सकारात्मक इंडिया के लिए चीजें है कि इंडिया 2-3 फ्रंट पे ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। पहला ये कि इंडिया ने कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं किया कि नेबरिंग कंट्रीज में कोई भी देश ऐसा हो जो न्यूक्लियर वेपन रखता हो, और इंडिया ने हमेशा शुरू से इस बात को ग्लोबल लेवल पर उठाया है कि इंडिया एक पीसफुल और स्टेबल रीजन चाहता है। उससे इंडिया को एक बहुत बड़ा आराम हुआ, ये जो पूरा जो मामला था 10 साल से इंडिया को लग रहा है कि अब चीजें बहुत ही सेफ और स्टेबल हो गई है। उस दूसरा सबसे बड़ा इंडिया के लिए फायदा यह है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट इंडिया का बढ़ेगा। इकोनॉमिक इंगेजमेंट की बात मैं करता हूँ तो इस बोथ वे ट्रैफिक, पहली बात यह है कि अब इंडिया जो है और ज्यादा मात्रा में तेल ले सकता है ईरान से, और जैसा कि आपको पता है कि ऑयल मार्केट ऑलरेडी बहुत ही गिरी हुई है, तो इंडिया के लिए अच्छा मौका है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व पे जो प्रेशर होता है ऑयल को लेके वो इंडिया के ऊपर कम पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंडिया की इंडियन जो कंपनीज हैं जो बहुत दिन से वो चाहती है कि अपने आप को एक्सपैंड करें, जो चाहती है अपना ट्रेड बढ़ाएं, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो ONGC हो, चाहे रिलायंस हो, और बहुत सारे छोटे या बड़े पैमाने के जो इनके ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो अब ईरान जाके आराम के साथ और बहुत ही ओपनली इन्वेस्ट कर सकती हैं, एक अच्छी कंपिटिटिव मार्केट दे सकती हैं ईरान को। और ईरान के लिए अच्छा है कि अब वो एक इंडिया में भी अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और मोर ओवर तो ईरान इंडिया की जो गुर्बत वैसे भी सिविलाइजेशनली है, कल्चरली है, पॉलिटिकली है, अब वो जो टाइज है, वो जो इनके संबंध है और डीपेंड होंगे, ये तीनों चीजें होंगी।